हम हमारे व्यक्तिगत जो साधना है, हमारे भक्तिमय जीवन को और हमारे भौतिक जीवन को कर रहे, लेकिन उसमें बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करते हैं, और वो उतना छोटा सा जो प्रॉब्लम है हमें उसे बहुत बड़ा लगता है कि ये नहीं कर पा रहे हैं, मंगल आरती नहीं जा पा रहे, या जो भी है हम उसमें संघर्ष करते हैं, लेकिन करते हैं वैसे भी। लेकिन ऐसे ही जब वैष्णव का जो परम, जैसे हम ऊपर ऊपर जाते हैं, काउंसलर्स हैं उनके ऊपर भी, उनके काउंसलर्स हैं, फिर अथॉरिटी है, कोर कमेटी, फिर उसके ऊपर टेंपल प्रेसिडेंट है, फिर वो GBC में आते हैं, तो क्या GBC जो है, गवर्निंग बॉडी कमीशन जो हमारे प्रभुपाद जी ने बनाया है, उनको भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते होंगे, तो वो प्रॉब्लम्स क्या है और अभी के समय में, और वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मैं व्यक्तिगत रूप से मेरा योगदान क्या कर सकता हूँ जिससे ये जो छत्र छाया है वो अनंत काल तक टिका रहे।
तुकाराम महाराज ने ये कहा है कि जया अंगी मोटेपना तया यातना कठिन, तो जितने आप आगे जाओगे ना उतने समस्याएं बढ़ जाएंगे।
मैं ये जानने के लिए इच्छुक हूँ कि उनको क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, क्योंकि हम हमारे साधना में रोते रहते हैं मेरा ये नहीं होता, लेकिन महाराज जी को
उनको उनको सारे शिष्यों के प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, उनको प्रोजेक्ट्स के प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है, ये प्रॉब्लम प्रोजेक्ट अभी आगे नहीं बढ़ रहा है, इसमें गवर्नमेंट कुछ अपोज कर रहा है, नेबर्स अपोज कर रहे हैं, कोर्ट केस डाल रहे हैं, ये उनका प्रोजेक्ट्स का प्रॉब्लम है, और इंडिविजुअल में ये लड़का अभी तक वो भाग गया, वाइफ को डिवोर्स कर दिया उसने, और वो भी छोड़ दिया उसने सोला माला करना, अभी वो नशा करता है या कहीं जाता है इधर उधर, तो इंडिविजुअलिस्टिक प्रॉब्लम भी उनके हैं डिवोटीज के, और संस्था के प्रॉब्लम्स भी हैं, क्योंकि उनको प्रचार करना है ना आगे, तो मंदिर बांधना है तो मंदिर में भी अपोजिट नेबर लोग अपोज कर रहे हैं, ये नहीं करना वो नहीं करना, मुसलमान लोग मंदिर अपोज कर रहे हैं बीच में, और थर्ड उनको प्रॉब्लम है उनके हेल्थ का, क्योंकि उनके हेल्थ जो है वो नीचे जा रही है, ऐसा नहीं कि वो ऊपर जा रही है, यंग होते नहीं जा रहे ना वो, तो वो हेल्थ को संभालते हुए उनको ये सब कुछ संभालना पड़ता है, और जो गुरु हैं उनको इसके अलावा, जैसे आप जप नहीं कर रहे हो या वो कोई भाग गया किसी के साथ में, इसके अलावा हमारे कर्मों को भी उनको झेलना है, और उसकी वजह से भी उनको तकलीफ होती है, बीमार पड़ते हैं, ये पड़ते हैं, वो पड़ते हैं। मैंने ना कुछ हद तक उसका अनुभव किया है, रोजी मुझे ये पता नहीं था पहले कि यज्ञ करना ये भी एक कर्म लेने का ही काम है, मुझे पता नहीं था पहले, मैं तो ये हॉबी में शुरू किया था, मुझे अच्छा लगता था वो ब्राह्मण के काम करने के लिए, लेकिन एक दो जगह पे मुझे ना ऐसा कितना ऐसा अनुभव हुआ शरीर में मुझे, कि मुझे लगा ऐसा क्यों है, सब रहे दो दो तीन तीन दिन में इतना डिप्रेशन में रहा वगैरह, तब मैंने मेरे फेलो जो पुजारी हैं पुरोहित उनसे डिस्कस किया, तो मुझे ध्यान में आया कि इसमें भी कर्मों का आदान प्रदान होता है, तब से मैंने केवल कर्मियों के लिए ये सब करना बंद कर दिया, पहले भी करता नहीं था लेकिन कभी कभी एक दो बार हुआ ऐसा, रिलेटिव्स में किया है ऐसा, भक्तों के रिलेटिव्स के लिए किया जो डिवोटी नहीं है, जो दारू भी पीते हैं, मांस भी खाते हैं, बीड़ी भी पीते हैं, ऐसे भक्तों के पिताजी माताजी के लिए एक बार किया वास्तु पूजा, एक बार मेरे रिलेटिव के लिए एक बार वास्तु पूजा किया, तो मुझे काफ़ी उसका अनुभव हुआ, और क्या अनुभव हुआ मन में आपको, समझो आप चूल्हा जला रहे हो, बारिश का मौसम है, आपकी लकड़ी गीली है, तो आप चूल्हा जला रहे हो, कितना कोशिश कर रहे हो, क्या क्या कर रहे हो, लेकिन वो धुआं 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 होता है ना, तो कैसा फीलिंग होता है, सफोकेशन, एक तो अग्नि जलती नहीं है और जलती तो धुआं ही देती है खाली नाक और आँख में, उस प्रकार का सफोकेशन का अनुभव होता है, और जब ठीक से नहीं होता है, जो होता ही नहीं कभी कभी, और बाकी जो आध्यात्मिक चीजें हैं उस पर तो निरुत्साह हो जाता है, मतलब हमारे अंदर जो अग्नि है उसके ऊपर वो पानी बीट गिर रहा है इन लोगों के कर्मों का, तो हमारी अग्नि जो प्रज्वलित है तो वो ठंडी हो रही है, तो धुआं निकल रहा है, अग्नि दिख नहीं रही है, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, फिर फूक करो, हवा दो उसको, फिर और सूखी लकड़ी लेके आओ, कुछ भी घी डालो उसके अंदर, जो भी है सब सारे प्रयत्न करने पड़ते हैं, फिर वापस वो नॉर्मल ट्रैक पे आता है, और अभी ऐसी स्थिति हो गई है, मैं आपको प्रॉब्लम्स के बारे में बोल रहा हूँ, कि अभी मैंने बीच में एक शादी करने के लिए मना कर दिया, मैं नहीं करूँगा, बिकॉज लड़की आपकी डिवोटी नहीं है, आई मीन डिवोटी है लेकिन जप नहीं करती है, और होने वाला दामाद भी जप नहीं कर रहे हैं, तो मैं तो स्ट्रिक्ट हूँ इसके बारे में, तो बाद में मैंने दूसरे हमारे को पुरोहित को फ़ोन किया, उन्होंने कहा प्रभु जी करो आप करो, कोई मना मत करो, मतलब क्यों, उन्होंने कहा कि आप मेजॉरिटी भक्तों के बच्चे लोग जप नहीं करते, कम से कम वो वैष्णव पद्धति से, मंदिर के पुजारी से, वैष्णव पद्धति से, गौड़ीय पद्धति से विवाह करने को तैयार है, यही भी बहुत बड़ी बात है। कलौट के बोले मुझे चाहिए ही नहीं अपना मंदिर का, मेरे को बाहर से जाइए, ऐसा टेंशन मत दो मुझे, आप उपवास करो ये करो ऐसा कोई टेंशन मत दो। तो कम से कम वैष्णव पद्धति से करने में वो सुबह उपवास रखने में रेडी है और हरि बोल जो भी करने के लिए रेडी है, वही एक्सेप्ट करे कि करो उसको। उसका मतलब क्या हुआ, उसका पति नॉन डिवोटी है, लड़की डिवोटी घर से है लेकिन चैंटिंग वैंटिंग कुछ करती नहीं, लेकिन नॉनवेज नहीं खाती है, मतलब प्रसाद खाती है रोज, लहसुन प्याज बाहर भी नहीं खाती है, वो सब करते हैं तुम लोग, तो वही पॉजिटिव है आज का। लेकिन उसमें जो भी कर्म का हिसाब किताब है वो तो अपने को लेना है ना, थोड़ी हम लोग उसमें फ्री है। अभी आप लोग देखेंगे ना, हस्बैंड की साइड अगर समझो नॉन डिवोटी साइड है और डिवोटी साइड लड़की की साइड है, जो तो आपको शादी करते हुए उसका अनुभव आएगा, बोला ऐसा टाइम पास करते रहते हैं, कुछ बातें करते रहते हैं, हाँ ये करते हैं, लोग सीरियस रहते हैं, मैं कुछ बता रहा हूँ तो उनका ध्यान नहीं रहता है, लड़का भी किसी को ऐसे ऐसे हाँ ऐसे 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 करते रहता है, मतलब गंभीर नहीं होते हैं उस विधि के लिए। तो मैं देख रहा हूँ लड़की की साइड बहुत सीरियस है, लड़का यार स्पेस्ड आउट है पूरा, तो बार बार बोलना पड़ता है इधर देखो मैं अभी कन्यादान करने वाला हूँ, इधर देखो मैं गांठ मारने वाला हूँ, तो ये सब कुछ जो ना वो भी कष्ट होता है ना उसके अंदर, वो जो सीरियसनेस आपसे उम्मीद है हमारी उतने नहीं मिल रही है मुझे, और मुझे लगता है कि मेरा तो सब बेकार जा रहा है सब कुछ, मतलब मैं जो गंभीरता से कर रहा हूँ कॉन्सेंट्रेशन से वो यहाँ पर वेस्ट जा रहा है, इधर उनको वैल्यू नहीं उसकी, क्योंकि तो लड़की की साइड लड़कों लोगों को इतना ओरियंट नहीं कर सकते, आपको ऐसा करना पड़ेगा, आप ऐसा कुछ नहीं कर रहे हो, वो भी एक संकोच में रहते हैं, तो ऐसे वातावरण में हमको करना पड़ता है, तो वे कितने प्रकार के कष्ट हो गए, एक तो करने में जोर लगाना पड़ रहा है, अरे इधर देखो, और बाद में फिर वो कर्मों का हिसाब किताब भी है दोनों। मैं कुछ थोड़ा आइडिया दिया कि एक छोटे पैमाने पर क्या एक्सपीरियंस मुझे आते हैं, उसको बड़े पैमाने पे करेंगे आप तो वहाँ पड़ेगा गुरु जीओं को और लीडर्स लोगों को क्या क्या झेलना पड़ता है। अभी देखो अभी मैं काउंसलर हूँ, ओके, वो भी एक गुरु की झलक है एक तरह से, ओके। अभी समझो कैसे बताऊँ, अभी मुझे कोई काउंसिल ही है, हाँ उसके घर में बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, बहुत लोन्स है, या उसका पति गैर जिम्मेदार है, या लड़की एकदम अच्छी डिवोटी नहीं है, या ऐसे कुछ ना कुछ करती रहती है, लड़का भी ऐसा लंबे बाल करके दाढ़ी बीड़ी करके कुछ ना कुछ चलते रहता है। तो जब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना, तो मुझे ये अनुभूति होती है कि जो माता या पिता मुझसे डिस्कस कर रहे हैं, जो उनका भाव मुझे बता रहे हैं, मुझे भी उसको शेयर करना पड़ता है और उनका सफरिंग मुझे भी झेलना पड़ता है, और मैं अनुभव करता हूँ कि मैं भी सफ़र हो रहा हूँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि मेरे काउंसलर को कितना कष्ट है, तो वो जो उनको कष्ट जो मुझे एक्सप्रेस कर रहे हैं वो उसको मैं भी अनुभव करता हूँ, और वो डिस्कशन ख़त्म होने के बाद घर जाके भी हम लोग 1-2 घंटा परेशान रहते हैं, डिस्कस करते रहते हैं इसके लिए। हाँ तो मेरा तो कुछ है नहीं, लेकिन जब मैं काउंसलर के रूप में आपको परामर्श दे रहा हूँ तभी भी मुझे आपके दुख का भी शेयरिंग करना पड़ता है, और होता भी है कि सब पर हम प्रेम करते हैं तो हमको उनका दुख देखा नहीं जाता कभी, तो वो जो सफरिंग उनको एक्चुअल हो रहा है उसका कुछ हिस्सा तो हमको अनुभव करने को मिलता है, अरे कैसे करें इनके लिए, तो हम लोग शेयर कर रहे हैं, आप सब लोग भी शेयर कर रहे हैं आप हॉस्पिटल में, सब लोग अभी कोई किसी का डेथ हो गया आपके सामने, किसी को किसी का कुछ हो गया है ना, तो बहुत दुख होता है ना हमको, अभी आपने इतना केयर दिया और फाइनली वो बेबी डेथ हो गया उसका, तो वो मम्मी का दुख देखकर आपको भी दुख होता है बहुत, तो हम सब लोग जो स्पिरिचुअल काउंसलर्स हैं वहाँ पर ऐसे सब कुछ शेयर करते रहते हैं। अभी आप कर्मा मत बोलो उनको, बड़ा नाम मत दो, लेकिन आप शेयर तो कर ही रहे हो, दुख का शेयरिंग तो करते रहते हैं, इसलिए उसका एक ही उपाय है जिससे वो बड़े लोग अपने आप को संभालते हैं, वो उनका साधना बहुत स्ट्रांग रहता है, क्योंकि उनको पता है कि, और हमको भी पता होना चाहिए और आपको भी पता होना चाहिए कि जब मैं किसी को काउंसलिंग कर रहा हूँ, ओके, तो आपके पास दुखी लोग आ रहे हैं, आपके पास यहाँ पर छुट्टी मनाने के लिए कोई नहीं आ रहा है, हाँ मुझे वनिता को मिलना है, वो 2 दिन आके वीकेंड में मिल के जाऊँगा, एडमिट होगा यहाँ पर और मिलूंगा, अच्छा लगता है उनसे मिलने का, ऐसा कोई नहीं आता है यहाँ पर, यहाँ पर दुख लेके ही आदमी आता है, फिजिकल परेशानी लेके आता है, मन की परेशानी लेके आता है, फाइनेंस की परेशानी लेके आता है, और बहुत सारी परेशानी लेके यहाँ पर आता है, और आपको अगर उनका दुख झेलना है तो आपका जो चार्जिंग है ना वो पूरा होना चाहिए, आपको मोबाइल से बात करना है कि मेरी बेटी की शादी है, बहुत सारे फ़ोन आ रहे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट कॉल है, अभी कैटर का फ़ोन आएगा, डॉक्टर आएगा, इसका आएगा, उसका आएगा, अभी वो इन लॉज का फ़ोन आएगा, तो मुझे तो मैं इसको चार्ज किए बिना मैं बात ही नहीं कर सकता ना, भले मैं 6 बजे उठना है तो मैं 4 बजे का अलार्म लगा के मोबाइल चार्ज पर रखे फिर सो जाऊंगा, फिर उठे उठे वो चार्ज पूरा रहेगा तो मैं सुबह उठते ही अपना फ़ोन फ़ोन कर सकता हूँ। तो वैसे आपके अंदर अगर चार्ज नहीं है स्पिरिचुअल चार्ज, तो दूसरों का दुख झेलेंगे ना तो आप एकदम डाउन हो जाएंगे, पूरा झेल ही नहीं पाएंगे उसको। तो कभी भी ना खुद के जो आपकी स्थिति है उसको डिस्ट्रॉय करके आप किसी को हेल्प नहीं कर सकते। देखो आप खुद डूब रहे हो तो किसी को डूबने से बचा नहीं सकते। आप अगर बोट पर हो तो आप उम्मीद कर सकते हो कि मैं भाई इसको बचाऊंगी, डोरी फेंक के उसको सपोर्ट करके खंभे को पकड़ के ले लूंगी उसके ऊपर। लेकिन मैं अभी आज खुद डूब रहा हूँ तो आपको कैसे बचाऊंगा। इसलिए किसी को भी बचाने के पहले, किसी को भी काउंसलिंग देने के पहले, किसी को भी सहारा देने के पहले खुद को सहारा दो, क्योंकि वो स्वार्थी एक्टिविटी नहीं है। मुझे सहारा देना, मेरी सहारा देना, मुझे मेरे लिए सहारा देना, वो उसको सहारा देने के लिए ही है। मैं मेरे मुझको सहारा दूंगा और मैं एकदम अस्वस्थ हो जाऊंगा, मैं एकदम स्थिर जगह पर हूँ तो डूबने वाले को मैं बचा सकता हूँ। और मेरे खुद की साधना आज ठीक नहीं हुई है तो मैं ऑलरेडी कमज़ोर हूँ, और उस दिन जिस दिन हमारा साधना कमज़ोर होती है उस दिन हम लोग इतने स्ट्रांग नहीं रहते हैं लोगों को समझाने के लिए, लोगों को पॉजिटिविटी देने के लिए। देखो आपके अंदर उतनी सकारात्मक शक्ति होनी चाहिए कि दूसरे की नकारात्मक शक्ति को नेगेट करके आपको उनको पॉजिटिविटी देना है, सकारात्मक शक्ति देना है। उतनी होगी आपके पास तो ही आप कर सकते हो, नहीं तो क्या होगा वो आपको देगा नेगेटिविटी आपकी और आप अफेक्ट हो जाओगे उसके ऊपर। नेचुरली भावना से अफेक्ट होना ठीक है लेकिन आप दूसरी तरह से अफेक्ट हो जाओगे, आपका साधना अफेक्ट हो जाएगा उसकी वजह से, कमजोरी की वजह से। जैसे समझो आपको अगर उसमें वायरल फीवर है तो आप उस दिन ओपीडी में बैठ नहीं सकते पेशेंट को देखने के लिए, क्योंकि पेशेंट का और कोई इन्फेक्शन आपको लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी आप कमज़ोर हो, इम्यूनिटी आपकी वीक है। तो डॉक्टर के लिए बेहतर है, पेशेंट का इलाज करने के लिए भी बेहतर है कि वो 2 दिन आराम करें और अपने आप को ठीक करें, और उसकी अगर रोग प्रतिकारक शक्ति ठीक हो जाए तो फिर वो लोगों को ठीक करने के लिए ओके रहता है। तो खुद बीमार रहेगा और 50 पेशेंट देखते रहेगा अलग अलग टाइप के, डेंगू वाला कोई आया, मलेरिया वाला आया, कोई इससे खांसी वाला आया, तो उसको लगना ही है वो, क्योंकि वो आज स्ट्रांग स्थिति में नहीं है, वो आज कमज़ोर स्थिति में है। समझो मैं भी आज बहुत दुखी हूँ किसी कारण से, और मेरा काम ही लोगों को इंस्पायर करना है, मुझे देख के लोगों को आनंद देना है, मुझे ऐसे करना है मुझे, तो उसे छुट्टी देना अच्छा है ताकि मैं अपने कमरे में रहूँ, अपने आप को संभालूँ ठीक से, अपने आप को धीरज देके हील हो जाऊं, और फिर नेक्स्ट डे जब मैं चार्मिंग पोजीशन में हूं तब मैं बाहर निकलूं। ये कोई डरपोक व्यक्ति का लक्षण नहीं है, ये बुद्धिमानी का लक्षण है कि आज मैं वो स्थिति में नहीं हूं, क्योंकि वो वस्तुस्थिति है ना, वो सत्य है। कोई भी व्यक्ति 24/7 12 महीने और 100 साल तक लगातार उत्साही नहीं रह सकता, उसके जीवन में भी ऊपर नीचे का संकट आते रहते हैं। कभी रात को देर होती है, सुबह लेट होता है, तो जपा नहीं होता है, कभी बीमार हो गया, कभी कुछ घर में कुछ हो गया, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गया, किसी की डेथ हो गई, क्या हो गया, जाना आना हो गया, एनर्जी नहीं है, तो अर्जेंटली कहाँ जाना पड़ा बहुत इंटेंस काम में, तो काफ़ी ऊपर नीचे हो जाता है। लेकिन वो था ना कि वो एक पिक्चर था शोले, हाँ, उसके अंदर वो डाकू जो है ना वो इंस्पेक्टर पहले घर के आने के पहले इंस्पेक्टर के घर पर आकर सबका खून कर देता है बदला लेने के लिए, और वो इंस्पेक्टर आ रहा है अपने घर पे छुट्टी पे आ रहा है, उसके पहले ही वो घर जाके सारे लोगों को मार देता है। और जब वो आता है घर पे तो इतना परेशान हो जाता है वो, उसको पता चलता है कि उसने ही सबका वध किया है। तो वो ना वैसे ही तिलमिले में उठकर घोड़े पे बैठकर जाता है निकल के, लेकिन शस्त्र लेकर जाने को भूल जाता है साथ में, इतना वो भावना से ऐसा हो जाता है, एक्साइटमेंट में हो जाती है, इतना वो क्रोध होता है उसको, तो वो सोचता भी नहीं है हाँ मैं पुलिस अफसर हूँ ये सोच के निकल जाता है। लेकिन वो डाकुओं के घेरे में जाता है जहाँ पर 50 लोग बंदूक लेके खड़े हैं, और ये निहत्ता वहाँ पहुँचता है। अगर थोड़ा सोच के अगर वो 2-4 सिपाही गन वन लेके खुद गन लेके जाता था तो कम से कम उसकी यश मिलता। तो क्या हुआ, बिकॉज वो क्रोध के भाव में बिना हथियार ले बिना सुसज्ज होते हुए गया तो वो दोनों हाथ कटवा के वापस आ गया। डाकू लोग उसको घेरते हैं, दोनों हाथ काट देते हैं उसके, जिंदगी भर के लिए दोनों हाथ कटे हुए आदमी जिंदगी बिताता है उसके बाद में, ना पुलिस की नौकरी ना कुछ नहीं, ना पावर ना कुछ खत्म। तो क्या गलती किया उसने, जहां पर उसको शस्त्र की आवश्यकता थी वहां बिना शस्त्र चला गया वो, तो उसको हारना ही है। इसलिए आध्यात्मिक शस्त्रों से सुसज्जित किए बिना अपने आप को आपको जाना ही नहीं है, नहीं तो आपको कुछ देने के बदले आपको लेने पड़ेंगे और आप कष्ट में जाएंगे, पीड़ा में ही जाएंगे, आप दुख हो गएंगे। तो वो संत लोग जो होते हैं ना, जो ऊपर सब भी बड़ी जिम्मेदारियों को संभाल रहे हैं, जैसे भक्ति साहू महाराज है, भक्ति साहू महाराज को मैंने देखा है कि सुबह 7 बजे लोगों को मिलना शुरू करते हैं, रात को 8-9 बजे तक मिलते हैं, और उन लोगों को उनके पास जैसे लोग आते हैं ना समस्या लेके, आप यकीन में नहीं कर सकते कि मैंने मेरे काउंसलिंग में कभी ऐसा हैंडल किया होगा, कभी क्या होगा, लेकिन जिस प्रकार से लगातार जिस प्रकार की समस्याओं का वो काउंसलिंग करते रहते हैं वो हम लोग यकीन नहीं कर सकते। लेकिन उसके पहले अपना जब पूरा कर लेते हो, जब छोड़ के अपॉइंटमेंट देते नहीं किसी को, अपॉइंटमेंट ये ऐसा टाइम रहता है कि जब हो जाएगा पूरा तब तक, उसके बाद में, क्योंकि एक बार वो जब 4 माला रह गया और वो चालू हो गया उनका, तो उसके बाद में 4 माला कब करने को मौका मिलेगा कोई भरोसा नहीं है उसका, वो रहेगा ऐसे ही रहेगा डेफिसिट 4 माला का, और आप देते जाएंगे अपना अपना बॉटल खाली करते जाएंगे, वो 4 माला का डेफिसिट वहाँ रहेगा ही रहेगा वो। फिर वो रात को 11 बजे कर रहे हैं, इसके बदले में वो सुबह ही कर रहे पूरा। जैसे मैं क्या करता हूँ, मेरा लेक्चर है आज, तो पहले से प्लान करता हूँ कि उस दिन मुझे इस पर सोना है, रात को कुछ मीटिंग बैठना नहीं है, मुझे जल्दी सोना है, जल्दी उठना है, पूरा जप करके फिर क्लास देना है। या मुझे मालूम है कि आज मेरे एक ऐसा सीरियस प्रॉब्लम काउंसलिंग मेरे पास लेके आने वाले हैं डिस्कस करने के लिए, 2 घंटे का हेवी डिस्कशन है, तो उसके पहले मैं वैसे प्लानिंग करूँगा कि मेरा चैटिंग हो जाएगा पूरा, मेरा साधना हो जाएगा, ताकि उनको हेल्प करने के लिए मैं योग्य हो जाऊँगा। तो जैसे लोग काम पे जाते हैं ना, सब लोग 7-8 बजे के बाद निकल जाते हैं काम के लिए, और दिन भर काम करते हैं, और जो भी सोना वोना है वो उसके पहले करते हैं ना, उठ के बैठ के जो भी करना है, कोई कसरत करनी है, योगा करना है, तो उसके पहले करते हैं। तो हम लोगों का काम क्या है, दूसरों को सहायता करना, दूसरों को परामर्श देना, उनको हेल्प करना, ये हमारा धंधा है एक तरह से। तो उसके लिए हमको जो शक्ति चाहिए वो हमको लेना है, उसके पहले हमारा जो शक्ति इकट्ठा करने का काम है, विश्राम का काम है, हीलिंग का काम है, अपने लिए जो करना है खुद को स्वस्थ रखने के लिए, और अपने जो शस्त्र हैं, चलो गंद लगा दिया है यहाँ पर, या चाकू रख दिया है यहाँ पर, कुछ रख दिया, वो हमारे शस्त्र, हमारा जप है, रीडिंग है, हमारा सत्संग है, हमारा जो रूटीन जो नरिशमेंट है वो हम लोग करेंगे, तो हमारा धंधा जो है वो अच्छा चलेगा, नहीं तो हम लोग बीमार हो जाएंगे, इंजर्ड हो जाएंगे हमारे बिजनेस में करते करते। तो क्या कर सकते हैं हम लोग उनके लिए जो इतनी बड़ी जिम्मेदारी ले रहे हैं, हम अगर हमारी साधना अच्छी तरह करेंगे ना, उनका बोझ कम हो जाएगा। सबसे बड़ा बोझ तो इसी का होता है, जयप्रदा का महाराज ने कई बार मैसेज भेजा है, अनंत बार ओपनली, कि मैं मेरे पापों का फल भोग कर इतना कष्ट नहीं पा रहा हूँ, मैं मेरे शिष्यों का जो गलतियाँ हैं साधना में, और बाकी पाप पूर्ण कार्य करते हैं और साधना ठीक से नहीं करते हैं और बाद में गलत काम भी करते हैं, उसकी वजह से मैं ये सफ़र हो रहा हूँ, और आप चाहते हो कि मेरी सफरिंग ना हो इतनी, तो आप सब लोग साधना अच्छी करो, तो 16 माला करना छोड़ दिया 16 माला करो, जो 4 नियम तोड़ दिए है वो 4 नियम पालन करना शुरू करो। से ओपन मैसेज उन्होंने भेजे है कई बार, हार्ट के ऑपरेशन के पहले, किडनी के ऑपरेशन के पहले, लिवर के ऑपरेशन के पहले, इसके हॉस्पिटलाइजेशन के पहले, हर बार भेजते हैं मैसेज, कि आप मेरे शिष्य लोगों को मेरी विनती है कि वो साधना अच्छी तरह से करें, मेरी आज्ञाओं का पालन करें, और जितना पवित्र रह सकते उतना पवित्र रहकर जिंदगी बिताने का प्रयास करें। तो अगर उनको कष्ट कम देना है, आपको माता पिता को कम कष्ट देना है, तो अच्छे बालक बन के रहो, गलत काम मत करो, पढ़ाई अच्छी करो, स्कूल में टाइम पे जाओ, लव अफेयर मत करो, नशा मत करो, पढ़ाई करो, अच्छे मार्क लेके आओ, तो अपने आप वो अपना काम कर ही रहे हैं, आपको फी भर रहे हैं, आपका खाना खिला रहे हैं, आपको सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन ऊपर से अगर हम लड़की का अफेयर कर रहे हैं, कॉलेज नहीं जा रहे हैं, मैटनी शो देखने जा रहे हैं, तो हम उनके परेशानी में भार दे रहे हैं एक्स्ट्रा, और ज़्यादा डाल रहे हैं परेशानी, जो परेशानी वो ले रहे हैं आपके लिए कर्तव्य के रूप में, उसके ऊपर हम लोग उनको एक भार दे रहे हैं ऊपर से, कि मैं ये पढ़ाई भी नहीं करता और मैं फेल भी हो गया हूँ, मेरा एब्सेंटिज्म हो गया है, अटेंडेंस 70% नहीं हुआ है मेरा, नोटिस घर पर आया है, शो कॉज नोटिस आया है कि क्यों एब्सेंट रहते हो, तब उनकी जो जिम्मेदारियाँ हैं उसमें बोझ डाल रहे हैं, उनको परेशान कर रहे हैं। एक शिष्य के लिए क्या कर्तव्य है? गुरु जी की उपदेश का परफेक्टली पालन करें और गुरु जी के लिए गौरव का चिन्ह बने, इस पर गुरु जी गर्व कर सके कि ये मेरा शिष्य है। गुरु को शर्म नहीं आना चाहिए कि ये मेरी शिष्य है, इतना गलत काम कर दी। गुरु जी को कभी कभी यहाँ पर क्या होता है ना, मैंने देखा है कितनी एम्बरेसमेंट होती है। मतलब मैंने किसी गुरु की शिष्य यहाँ पर आई, यहाँ पर आके बहुत बदतमीजी की उसने, बहुत हर जगह पर तकलीफ दी लोगों को। तो यहाँ तक पहले हम लोग अपना हैंडल कर लेते हैं उनको, लेकिन ऐसे हो गया कि अभी वो उसके गुरु को बताना जरूरी है, अभी इतना ज़्यादा हो गया है। तो गुरु जी को हमने बताया सब कुछ। तो गुरु जी जब अगली बार यहाँ पर आए तो उन्होंने बकायदा यहाँ पर सॉरी बोला कि हम माफ़ी चाहते हैं कि मेरी शिष्या ने आपको आप कष्ट दिया है, बहुत ही शर्मिंदा हूँ। उनका कोई काम नहीं इसमें, लेकिन वो क्योंकि उनकी शिष्या है इसलिए उनको सर झुकाना पड़ रहा है किसी यहाँ पे जाके, और माफ़ी मांगनी पड़ रही है। तो ऐसी नौबत हमारे गुरु पे कभी ना आ जाए हमारे बर्ताव की वजह से। ये एक उनको सपोर्ट करने का और एक तरीका है कि हम ऐसे रहे कि हो सके तो हम गौरव का ही चिन्ह बने, नहीं तो कम से कम तकलीफ का कारण तो न बने, कम से कम तकलीफ का कारण तो न बने, और हो सके तो गौरव का चिन्ह बने कि भाई लोग पूछे आप किसके डिसाइबल हो, इतने वंडरफुल आप सेवा करते हो, कौन हो आप, किसके डिसाइबल हो। तो जब बोलेंगे तो गुरु जी का गौरव बढ़ना चाहिए आपकी वजह से। ऐसे रहेगा तो फिर गुरु जी को अपना कर्तव्य करने में कोई कष्ट नहीं होता है, गुरु जी को आपके कर्म लेकर झेलने में कोई कष्ट नहीं होता है। वो कर्म भी झेल रहे हैं और आप पाप भी कर रहे हो और आज्ञा पालन भी नहीं कर रहे हो, तो वो कर्तव्य करने में कितनी बाधा है उनको। ये तो कर्म तो झेलना ही है, ऊपर से एक्स्ट्रा कर्म भी लेना है जो करने जा रहे हैं। बहुत सारे लोग ना दीक्षा तक ऐसा मेहनत करते हैं, दीक्षा होने के बाद हिले पड़ जाते हैं पूरा, अभी क्या दीक्षा हो गया ना, अभी क्या चिंता है, तो ये छोड़ देंगे, जल्दी उठना छोड़ देंगे, बाहर खाएंगे, फिर वो करेंगे, फिर ये करेंगे, ठीक है अभी क्या है। उनको लगता है दीक्षा मतलब लाइफ का गोल पूरा हो गया, उनको ये पता नहीं कि दीक्षा मतलब अभी शुरू हो गया, अपना एक्चुअल शुरू हो गया, जो करना था वो शुरू करने के लिए हम लोग तैयारी कर रहे थे आज तक, और अभी शुरू हो गया, अभी इसके आदमी अंत तक पहुंचना है, इस सभी को लगातार चलाते रहना है। इस चीज़ को भूल जाते हैं लोग, बहुत सारे लोग सोचते हैं काउंसिलर लोग की दीक्षा मिल गया ना फिर अपने को कोई चिंता की जरूरत नहीं। काउंसिलर को भी अभी तब तक फॉलो करना है, दीक्षा हो जाए खुद की रिकमेंडेशन, एक बार दीक्षा हो जाए फिर काउंसिलर को भी कोई जरूरत नहीं पूछने की, हो गया ना अभी दीक्षा क्या, अभी मीटिंग में आए ना आए, टाइम पे आए ना आए, सेवा में आए ना आए, डोनेशन दे ना दे, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करें ना करें, क्या फर्क पड़ता है, नाम तो लग गया मेरे ऊपर, ऐसा लोग सोचते हैं, वो बहुत घातक है ऐसा विचार करना। जैसे कोई अविवाहित स्त्री है, लड़की है कोई, फ्री है वो इधर उधर, बट शादी करते तो उसकी जिम्मेदारी कितनी बढ़ती है। अभी मैं किसी की पत्नी हूँ, किसी की बहू हूँ, किसी की देवरानी हूँ, किसी की जेठानी हूँ, किसी का क्या है इसकी पत्नी हूँ, इतने सारे काम है उसके ऊपर, और वो अगर अपनी जिम्मेदारी के लिए गंभीर नहीं है तो जाकर मैसी करने वाले पूरा, वो कुछ नहीं करने वाली हो। तो हम लोग ऐसे अविवाहित स्त्री की तरह है जैसे दीक्षा के पहले, लेकिन दीक्षा होने के बाद में हम लोग और फ्री नहीं हो जाते हैं और हम लोग जिम्मेदारी को बंद जाते हैं उसके अंदर। प्रॉमिस है हमारा वो कि हम लोग अभी किसी का टीका लगाया हमने अभी गुरु जी का, वो हमारा टीका उनके नाम का है, तो उनको वो या तो शान देगा या तो निंदनीय हो जाएगा, उनके लिए संकोच वाला काम हो जाएगा। तो कैसा है ना, वो बचपन में कहानी थी हमारी कि लोग सोचते राजा कितना भगवान है ना, वो कितना सम्मान मिलता है उसको, कितना एस्कॉर्ट है, खाने पीने का कितना ख्याल रखते हैं उसका, कितना बॉडीगार्ड रहते हैं उसके साथ, कितना सुख सुविधा रहती है उसके लिए, जल विहार के लिए जगह है, ये विहार के लिए मैदान बना के रखा है, उधर उसका मसाज की व्यवस्था करके रखी है, तेल का सुगंधी मसाज किया जा रहा है, कितनी सुविधा है उसको। तो किसी ने कहा कि राजा आपके तो मजा है बहुत, तो राजा ने कहा आ जाओ मेरे सिंहासन के पास आ जाओ। तो सिंहासन के पास मैं आया, उसने बोला ऊपर देखो, तो ऊपर एक तलवार लटक रही है जिसकी नोक जो है उस सर के ऊपर है उसकी, तो ये जो है ना कभी मेरे सर पे गिर सकती है इसका, ये ऑफ ये काव्यात्मक कहानी है, लेकिन वो कह रहा है कि तलवार जो है ना ये मेरी जिम्मेदारी है, ये अगर मैं चुकता हूँ तो ये तलवार मेरे सर पे घुस जाएगी इधर, तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। तो आप लोग खाली उसका जो लाभ मिल रहा है वो देख रहे हो, लेकिन कितनी जिम्मेदारी है वो नहीं देख रहे आप। जैसे गुरु को हम देखते हैं, अरे स्पेशल थाली, हाँ स्पेशल आइटम्स, इतने सारे आइटम्स, कहीं भी जाएगा तो वीवीआईपी सब दंडवत कर रहे हैं, वो तो हार डाल रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं, देख रहे हैं कब मैं इनसे बोलूँ, कब मुझे देखेंगे, कब मुझे स्माइल करेंगे। कितना इंपॉर्टेंट व्यक्ति है ये, कितना उसका पोजिशन कितना पावरफुल है। काश मैं भी ऐसा, बच्चे लोग ऐसे कभी कभी सृष्टि में बैठ के बोलते थे कि आप क्या बनोगे, आप क्या बनोगे। दो बच्चों ने बोला हम गुरु बनेंगे, बहुत मजा रहता है गुरु बनने में, बहुत ना मजा आता है इसमें, सब जगह अपना एकदम अच्छा चलेगा। तो वो क्या देख रहे हैं कि क्या बेनिफिट है गुरु होने के बाद में, लेकिन बनने के लिए और रहने, गुरु बने रहने के लिए कितना कष्ट है उसके पीछे, आपको पता नहीं है। ये सब छोटी मात्रा में हम लोग एक्सपीरियंस कर चुके हैं। जब भी मैं अभी विदेश जाऊंगा समझो, तो हर जगह मैं वीआईपी हूँ, जहाँ पर आएंगे वहाँ पर कहीं रंगोली निकालेंगे, कभी दीपक लगाएंगे, कभी हार डालेंगे, कोई आसन बना कर रखेंगे, बिठाएंगे उसके ऊपर, और वो 50 आइटम ला के खड़े करेंगे। लेकिन बकायदा बोलता हूँ आपको, मैं जैसे बोलता हूँ कि वो ना खाने का भी इतना दिल नहीं होता है जितनी जिम्मेदारी होती है। आपको लगता है कि आपको 50 आइटम दिए हैं, आप खा नहीं पाते उसको, वहाँ बैठ के आपको लगेगा काश मुझे मिल जाए इतना सब, मैं खा जाऊँगा उसको। लेकिन आप यहाँ बैठोगे आपको परोसा जाएगा तो आप नहीं खा सकते उसको, यू कैन नॉट। वो सब एक्सटर्नल है पूरा, वो लगता अच्छा है, वाह क्या बात है, नहीं थाट है, लेकिन एक्चुअलिटी में नॉट पॉसिबल। ऊपर से उनका क्या होता है गुरुजी का, तुझे अभी गुरुजी आ गया तो करके, हाँ तो आप बोलेंगे मेरी वाइफ के एक फ्रेंड है, वो भी प्रो डिवोटी है, उसको भी कुछ बनाने को बोलना, तो वो भी कुछ बना के लेके आएगी। वो बोले इसका कोई रिलेटिव है, कजिन सिस्टर है उसकी, या उसकी भाभी है, अरे वो गुरुजी आए उसको भी तो लाभ मिलेगा, तू भी बना ले कुछ। अभी क्या होता है बताइए आप, सब लोगों की चेतना को उनको एक्सेप्ट करना पड़ता है। और गुरुजियों की स्थिति ऐसी होती है, आप उनको 10 आइटम खिलाएंगे ना, उनको हर एक आइटम को देख के मालूम पड़ता है कि ये सही भावना से बनाया है और ये सही भावना से नहीं बनाया है, ठीक से पता चलता है उनको देखने से। लेकिन वो बोल रही है कि महाराज ये मेरे भाभी ने बनाया है, तो वो खाना पड़ता है उनको आपको संतुष्ट करने के लिए। आप बोले मेरी भाभी ना बहुत अच्छी है, वो आज आपके लिए उन्होंने प्रेम से ये बनाया आइटम, उनके गाँव का आइटम है, और वो डिवोटी नहीं है, तो आपके लिए वो भाभी का आइटम भी खाएंगे। और कुछ आइटम बाहर से ला के रखते हैं, तो ये भी 2 स्वीट बनाने का टाइम था लेकिन 4 स्वीट खिलाने का था, 2 आइटम बाहर से लाते हैं तो भी खाना पड़ता है। तो महाराज जी हमारे गांव का बीकानेर का स्पेशल स्वीट है, ये मैंने घर में बनाया, ये स्पेशल स्वीट मैंने वहाँ से लाया, तो उसको भी चखना पड़ता है। इसका मतलब कितने सारे समस्याओं को एक्सेप्ट करना पड़ता है उनको, जैसे वो नहीं कर सकते लेकिन कर रहे हैं। और ये सारी स्थिति हमको भी गुजरना पड़ता है छोटी मात्रा में, वो जबरदस्ती करते कभी कभी, मानो ये खाओ ये खाओ, खाना ही पड़ेगा, आप एक्स्ट्रा एक और लेना ही पड़ेगा, हमारे गांव का स्पेशलिटी है, उनका हेल्थ खराब है, फिर भी उनको लेना पड़ता है उसको, कई प्रकार की समस्या है। इसलिए बेस्ट क्या है, उनको कैसा अच्छा लगता है वैसे आपको करना है। हम लोग क्या करते हैं, हमको क्या अच्छा लगता है उनको उनके लिए करने के लिए वो करते रहते हैं, है ना। हमको उनके लिए क्या करना अच्छा लगता है वो हम लोग करते रहते हैं, उनको हमसे क्या अच्छा लगेगा वो नहीं करते हम लोग। जैसे अभी जन्माष्टमी है, सबको बोला है कि मंदिर के लिए गुरुजी के प्रोजेक्ट के लिए अभी पैसा इकट्ठा करना है, तो कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, उधर कुछ कचौरी भेज रहा है ये प्रोग्राम में, उधर उधर किधर चिक्की भेज रहा है, किधर कोई फल भेज रहा है, और बड़ी सेवा कर रहा हूँ। लेकिन उसमें एसेंशियल प्रॉब्लम क्या है, वो उसको क्या अच्छा लगता है वो कर रहा है, उसको जो बताया जा रहा है वो नहीं कर रहा है। और वो अगर फल नहीं दिया आपने प्रोग्राम के अंदर, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई प्लानिंग नहीं उसका फल देने का, वो एक्स्ट्रा आइटम हो, तो बिना जरूरत की सेवा मुझे करने इसलिए मैं करता हूँ, उसका वैल्यू कुछ नहीं है। और जरूरत की सेवा जो मुझे करनी चाहिए जो बताया जा रहा है वो मैं नहीं कर रहा हूँ, तो बोल रहा है मैंने वहाँ पर भी दिया, उधर भी फल दिया, उधर कचौड़ी दिया, तो मैंने कहा कि ये सब वेस्ट ऑफ टाइम और एनर्जी है, तो कोई वैल्यू नहीं है, जो बताया जा रहा है वो करो। तो हम लोग उस कैटेगरी सब लोग, मुझे क्या अच्छा लगता है वही करते रहते हैं, सामने वाले की जिसकी सेवा कर रहे हैं उसके लिए क्या अच्छा है, उसके लिए पसंदीदा क्या चीज़ है, प्रसन्न कैसे होगा, किस वो चीज़ नहीं करते हम लोग। ये भी गुरुओं के लिए बहुत बड़ी समस्या होती है, अरे कैसे समझाए इसको, ये गुरु मुखा पद्म वाक्य चित्तित कोरिया एक, कैसे समझाए इसको, उनका तो मेरा मुख पद्म वाक्य वही बोल रहा है, मुझे जो लगता है वही परफेक्ट है ना, वही उसकी मेंटेलिटी है। ये बहुत बड़ा स्विच ओवर है ये, मुझे क्या लगता है, गुरु को क्या लगता है इसका, आप अगर हम नहीं समझ सकेंगे तो मुझे क्या लगता है वही जीवन भर करते रहेंगे और लगेगा कितना कर रहा हूं मैं, देखो मैं कितना कर रहा हूं। आप फिर भी बोल रहे हो आप माया में हो, माया में इसलिए हो कि आपको अभी तक समझ में नहीं आया एसेंस कि आपको करना क्या है। आपको करना वही है एक शिष्य बनने के बाद में जो गुरु जी का आदेश के रूप में आपके पास में आता है, वही आपको करना है और कुछ नहीं करना है। एक वाक्य हम लोग चिंतन करेंगे ना, गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते कोरिया का, आपका जीवन सफल है उसके अंदर। केवल एक ही बात करो कि मैं जो कर रहा हूँ गुरु जी की इच्छा है, गुरु जी को प्रसन्नता मिलेगी तो करो, उत्तर मिलता है, जरूरत नहीं इसकी मत करो उसको। वॉट विल प्लीज गुरु, अगर ये करने से गुरु जी को प्रसन्नता मिलेगी क्या तो करो, वो सच्चा शिष्य है, वो मुझे क्या अच्छा लगता है उसके बारे में सोचता नहीं है। मुझे वो डोसा अच्छा लगता है और हमारे गांव में डोसा बहुत अच्छा बनता है, लेकिन गुरु जी को अभी उड़द दाल का परहेज है, उनको नहीं, डॉक्टर ने बताया मुझे नहीं बनाना चाहिए, उनके लिए क्या जरूरी है, उनको लगे भाई वो नाश्ते की रोटी खिलाओ, उनको तो खिलाना चाहिए। आपके लिए क्या अच्छा है, आपके लिए क्या आनंददायक है, आपके लिए क्या प्रसन्नता देने वाला है, वो मैं करना चाहता हूँ। ऐसा करेंगे ना हम तो अपने ऊपर वाले किसी को तकलीफ नहीं होगी। यहाँ पर भी हॉस्पिटल का देखो आप कंपनी है एक, यहाँ पर आपको नौकरी कर रहे हैं, क्या आपकी बेस्ट पोजीशन है, जो आपका जॉब डिस्क्रिप्शन है संस्था ने आपको दिया है वो आप बराबर तंतोतंत निभाएंगे, कोई समस्या नहीं आपको, बताया हुआ है वो करते जाओ, टाइम पे आओ पंच करो, टाइम पे जाओ पंच करो, टाइम पे छुट्टी लेने के समय आप ठीक से अप्लाई करो रूल के साथ, सब नियम का पालन करो और जो काम दिया है वो करो, आपको कभी समस्या नहीं आएगी, ना आपके HOD को आएगी ना आपके बॉस को आएगी। लेकिन जब आपका काम आप नहीं करते हो तो आपको भी तकलीफ और सबको भी तकलीफ, सबको भी तकलीफ, किसी को भी दंड देने को अच्छा लगता नहीं है। अभी आपको मैंने पकड़ा है कि आप गलत काम कर रहे हो, अब आपको दंड देना है, मुझे करते समय आनंद नहीं आता, कभी भी खुशी नहीं होती, कितना भी मैं क्रूर कर्मा रहूँगा दुष्ट रहूँगा फिर भी तकलीफ तो मुझे होती है किसी को कष्ट देने में। मैं उस कष्ट को ही खुशी मान सकता हूँ, वाह आज मैंने ये माता जी को अच्छा दंड दिया, उसको मैं खुशी मान सकता हूँ, लेकिन कष्ट मुझे होगा ही कि नहीं, तकलीफ तो दिया है मैंने उसको। तो इस तरह से शाबाश के देने में सबको अच्छा लगता है, और अगर शाबाश के देने लायक कार्य करोगे तो शाबाश के देने वाले को खुशी है और लेने वाले वाले को भी खुशी होती है, तो मुझे शाबाश की मिली और मुझे मैंने शाबाश की दी, ये दोनों तरफ से खुशी है। तो ये जहाँ जितना सत्य है कि एक नौकरदार व्यक्ति को भी अपना दिया हुआ काम टाइम पे अच्छी तरह से करना चाहिए, उसी तरह से एक शिष्य को अपने गुरु जी की आज्ञा का पालन अच्छी तरह से करना चाहिए, परफेक्टली करना चाहिए। ऐसा करने से आप जिस संस्था में बैठे हो, जिस केंद्र में बैठे हो, जिस ब्रांच में बैठे हो, वो भी शांत, जो ब्रांच जिस संस्था का हिस्सा है वो भी परफेक्ट, आपका लीडर भी परफेक्ट, आपके गुरु भी प्रसन्न, भगवान भी प्रसन्न, ऐसा फॉर्मूला है। और आध्यात्मिक संस्था में जितनी आप प्रगति करोगे और जितनी सेवा आपको मिलती जाती है उतना जिम्मेदारी भी बढ़ती जाती है आपकी, उसे लेना पड़ता है बहुत लोगों का, लेकिन वो लेने के लिए लोग तैयार है इसलिए वो बनते हैं ना, एक्सेप्ट करते हैं। जैसे हमारे महाराज पहले गुरु बनने को तैयार ही नहीं थे, तब उनको बहुत बड़ी गौड़ी वस्तुओं ने बताया कि भाई आपको ऐसा टाइम आ गया, आपको आप बनना पड़ेगा, आपको ऐसा नहीं है, ये आपके ऊपर डिपेंड है, वो लोग आपकी ओर देख रहे हैं, वो भगवान के प्रतिनिधि के रूप में आपके मन में कितनी भी नम्रता होगी लेकिन आपको अभी जिम्मेदारी देनी पड़ेगी। तो ऐसा नहीं कि वो कर्म लेने से डर रहे थे, उनको वो नम्रता से आता कि नहीं मैं किसका मालिक क्यों बनूं, लेकिन मतलब आपकी वो सेवा है, अभी आपको सेवा के रूप में करना है उसको, राजा बनना मतलब आपकी सेवा है। शिवाजी महाराज भी यही कह रहे थे कि नहीं मैं राजा नहीं करूंगा, मैं विरक्ति हो गई, मैं जाऊंगा जंगल में, रामदास स्वामी को बताया अब मैं जाऊंगा, मेरे को राजा नहीं करना है, मुझे इतना अभी नहीं अच्छा लगता सब कुछ। तो रामदास स्वामी उनको फटकार दिया, उनको बोला कि आपको क्या लगता है राजा आपका है, आपका राज्य नहीं है, श्री भगवान का राज्य है वो, आप नौकर हो, आप राजा हो लेकिन भगवान के नौकर बन के आपको राज चलाना है, आपका ड्यूटी है वो छोड़ बड़ के जाने का नाटक मत करो, आप चुपचाप काम करो अपना, कहाँ जा रहे हैं विरक्त बन के, आप राजा समझते हो यही आपकी तकलीफ है, राजा नहीं आप सेवक हो, प्रधान सेवक हो आप। तो इस तरह से उन्हें शिवाजी महाराज का भ्रम दूर कर दिया, प्रसंग में कठोर शब्दों से दूर कर दिया, तो उनकी नम्रता उनको प्रिवेंट कर रही थी, लेकिन उनको बोला नहीं आपका ड्यूटी है तो उन्होंने फिर लिया। अभी तो ढेर सारे हजारों शिष्य हैं उनका कर्मों को स्वीकार कर ही रहे हैं, सबकी उद्धार करने की जिम्मेदारी भी ले ली है। तो ऐसे सब लोगों का समय आएगा एक दिन, आपको भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, किसी ना किसी की लेनी पड़ेगी, छोटे मोटे मात्रा में लेनी पड़ेगी, छोटे मोटे रोल में लेनी पड़ेगी, लेकिन लेना तो है ही। हमारा आज्ञा हो तारे ये देश, ये आपका कर्तव्य है क्या? नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं कर सकता, नहीं नहीं, महाप्रभु बोल रहे हैं आपका, मेरा आज्ञा है आपको, आई ऑर्डर यू, हमारा आज्ञा होए गुरु तारे ये देश, गुरु बनकर आप जहां बैठे हो वहां लोगों का उद्धार करो। तो हमको पद से आसक्त रहना नहीं चाहिए, हमको जिम्मेदारी से जुड़ना चाहिए। वो तो जिम्मेदारी से बाद में गाड़ी मिलेगी घूमने के लिए, मुझे हवा एसी का हवा मिलेगी, वो बेनिफिट देख के वो पोस्ट लेना नहीं आपको, आपको वो पोस्ट लेना है उसकी सेवा देखकर, बेनिफिट लेकर देना नहीं है कि मैं अभी डायरेक्टर बनूंगा तो मुझे एसी का बंगला मिलेगा रहने के लिए, गवर्नमेंट का बंगला मिलेगा, एस्कॉर्ट मिलेगा, गाड़ी मिलेगी, नौकर मिलेंगे, तो मैं डायरेक्टर बनना चाहता हूँ, वो सेवा करने के लिए बनता है, उसके बेनिफिट को देख कर नहीं बनता है। ठीक है, और कोई प्रश्न है किसी का? और किसी का कोई प्रश्न होगा इनके अलावा?
एक्चुअली प्रभु जी थोड़ा सा लड़का या लड़की को लोग बाहर के लोग भी बोलते कि डिवोटी से बोलते कि शादी करना है, तो फिर हम बोलते कि डिवोटी चाहिए ना कि सब कुछ ठीक हो, नहीं बाहर से शादी करके उनको डिवोटी बना सकते, बट इट डजंट हैपन, नहीं होता है, इनफैक्ट उल्टा हो जाता है।
कोशिश करना अपना काम है, आप अपना कोशिश करो, कोशिश करते रहो, अच्छी तो अच्छी। देखो हमारा प्रिंसिपल है उनको आइडियल क्या है बताना, करना क्या है उनके हाथ में, क्योंकि अभी आप वो जवान हो गए, आपके हाथ से निकल गए, अभी वो छोटे बच्चे नहीं है 5 साल के, तो जब आप जवान होते तब तक वो हमारे हाथ में रहते हैं, एक बार जवान हो गए तो हमको उनको ऑर्डर करने का कोई अधिकार बचता ही नहीं है।
चाहे के बाद हो गया, हाँ, अगर अभी करना है
किसको,
लड़का या लड़की को शादी करना है,
तो आपको बताना ही है कि आप भक्त बनो और भक्तों से शादी करो, ताकि आपका जीवन उद्धार उद्धार के मार्ग पर रहेगा, लेकिन नहीं बिल्कुल देना है, लेकिन अगर नहीं सुनते हैं उनको नहीं करना, तो आप क्या कर सकते हो, शादी उनको करनी है, आपने तो कर लिया शादी ड्यूटी के साथ, उनको करना है तो उनकी मर्जी है, क्या कर सकते हैं, है ना। अल्टीमेटली हम लोग खाली गाइड कर सकते हैं इस एज में, और अपना उदाहरण दिखा सकते हैं कि हम लोग कैसे परफेक्टली सिचुएटेड हैं भक्त होने के बाद, बाकी वो नहीं मानते तो अभी भक्त होने के बाद भी, भक्तों की शादी करने के बाद भी फिर वो होटल में खाते हैं, पिक्चर देखने जाते हैं, लंबे बाल रखते हैं, दाढ़ी रखते हैं, क्या क्या करते हैं, भक्त की शादी की है, भक्त दोनों भक्ति है, लेकिन भक्त होने के दीक्षित भी है, और उसके बाद में फिर अलग अलग काम करते हैं, तो भी आप क्या कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते। हमारा एक ही काम है, आपको गाइडेंस देने का समय आएगा तो आइडियल गाइडेंस देना है, और खुद के जीवन में वो आइडियल गाइडेंस जो है फॉलो करना है, बोलेंगे आप क्या है बड़े बड़े देखो इतने अभी भी कितना फैशन करते हो, उनको बोलते हो मत करो और ये करो, आप लोग आप भी फैशन करते हो ना, आपने भी कितना भी ब्यूटी पार्लर में गए थे, आप ये किया वो किया, और हम लोग को बोलते ये मत करो वो मत करो, वैसे ही बोलेंगे, उनको जो सुनना है तो क्या कर सकते। इसलिए आपका बीपीएस है ना, बीपी भक्त प्रहलाद प्रोजेक्ट, उसके लिए है वो, गर्भ से ही गाइडेंस है उसके लिए, परवरिश गर्भ से ही दे रहे हैं आप उसको, ताकि वो वैसे ही निकलेगा उसी रास्ते से। अभी वो पेट टेढ़ा उसका फल भी टेढ़ा, अभी वो टेढ़ा आप ठीक करने की कोशिश कर रहे हो तो भी वो एक फल ठीक करोगे टेढ़ा वाला, दूसरा फल आएगा वो टेढ़ा ही आएगा, क्योंकि पेट ही टेढ़ा है, तो क्या करेंगे उसको भी, इसलिए शुरुआत से ही करना चाहिए। अभी आगे बहुत मुश्किल है, आप लोग समझे ना, अभी कभी अगले जन्म में बनेंगे अच्छा डिवोटी, अभी थोड़ा इसमें मुश्किल लगता है मुझे, आगे आके जाके अरे जी क्या बताएं, प्रभुपाद जी का संस्था में अभी हमारी पीढ़ी के बाद की संस्था जो पीढ़ी है ना, वो क्या कर रही है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी सुनते नहीं है, कुछ भी नहीं सुनते, बस वो असल प्याज नहीं खा रहे ना, बाहर आमलेट नहीं खा रहे ना, बस थैंक यू वेरी मच, इतना ही ध्यान, थैंक यू करो एक माला,
यही पीढ़ी तो अच्छा करने वाली है, प्रभुपाद ने बोला ना,
लेकिन आप उनको क्या जबरदस्त नहीं कर सकते हैं, अभी वो नहीं कर रहे, जब क्या कर रहे हैं अभी, जन्माष्टमी को एक माला करते हैं, बोला करो हुआ, चलो एक माला जन्माष्टमी को करो कम से कम, ओके थैंक यू बोलने का उनको, चिल्लाने का नहीं, क्या एक ही माला करते हो, हमने 64 माला हो गया मेरा अब तक, नहीं तुम 64 माला 128 करो, उसको एक करने में धन्यवाद दो, सिंपल उसको धन्यवाद दो, तारीफ करो, एक माला किया ये लो और एक मिठाई बना रही तुम्हारे लिए, आपने एक माला किया इसलिए मिठाई एक्स्ट्रा तुम्हारे लिए, थैंक यू वेरी मच, ऐसा इनकरेज करो, उसमें आपका हित है, अगर टोकते रहेंगे आप उनको तो फिर वो एक माला भी नहीं करेंगे, फिर नहीं करना ही नहीं है हमको, आप मिठाई बनाओ मत बनाओ, हमको करना ही नहीं है, ऐसे बोलेंगे तो क्या कर सकते हैं आप, कुछ नहीं कर सकते, आप खाली आपके लिए अच्छा कर सकते हो, दूसरों के लिए खाली विचार कर सकते हो अच्छा नहीं, तो उसके हाथ में अच्छा करना कि नहीं करना, कैसा है ना माता जी, ये गृहस्थ आश्रम जो है ना ये आखिर में आपको ऐसे कड़ी पर आके पहुंचाएगा, बोलेंगे ये सब बेकार और झूठ है, इट्स ऑल यूजलेस, इसमें कोई राम नहीं है, इसमें कुछ भी दम नहीं है, इसमें खाली भगवान का भजन करो बस, छूटो इधर से, कुछ होने वाला नहीं है, ये कंक्लूजन पे भगवान आपको लाएंगे ही लाएंगे, क्योंकि संसार से आपको जब तक विरक्ति नहीं होती है तब तक उसकी प्राप्ति नहीं होती है, इसलिए भगवान आपको संसार की विरक्ति में लाके छड़ेंगे ताकि आप दिल से उनके ऊपर प्रेम कर सकें, और अगर सब कुछ अच्छा है तो आप उसे फंसे रहेंगे, अरे मेरा लड़का मेरा पोता मेरा ये मेरी बहू मेरा उसका जिम्मेदारी उसको कर्जा है ये उसमें लगे रहेंगे तो कभी बाहर निकलने का चांस ही नहीं है उसके अंदर, इसलिए एक गृहस्थ आश्रम का अल्टीमेटली एम क्या है, वही विरक्ति है जो ब्रह्मचारियों को सन्यासी को अपेक्षित है, ये मत समझना कि वो लोग डिफरेंट ट्रैक पे है उनका गोल डिफरेंट है, नहीं उनको भी वो चक्र में से वहीं पहुंचना है विरक्ति में, और आपको भी ये चक्र में वहीं पहुंचना है, क्योंकि तो दोनों का लक्ष्य एक ही है, फाइनली आप गृहस्थ और वो सन्यासी एक ही भगवान को मिलने वाले हैं एक ही स्थिति में जाके, वो बदलने वाला नहीं है कि आप गृहस्थों को अलग भगवान है, कोई गृहस्थ भगवान है सन्यासी भगवान है, ऐसा नहीं है, फाइनली हम लोग सब इकट्ठा कहाँ होंगे, एक ही जगह पर इकट्ठा होने वाले पहले आपने अलग रास्ता लिया था, लेकिन घूम फिर के आपको आना है उस नाके पर आना है जहाँ पर सब मिल के आगे जाना है भगवान के पास, तो वो जो नाके पे आए हैं उसी नाके पे आपको पहुंचना है, तो रियलाइजेशन ही है, करो आप अपना ड्यूटी करो सब कुछ करो करो, फाइनली आपको उसमें से आसक्ति दूर करके विरक्त तो होना ही है, और जल्दी हो सके आप मन से अच्छा है आपके लिए, देर से दुखी होकर करेंगे आपके लिए तकलीफ है, और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है तब तक विरक्त हो गए तो और अच्छा है, ये भी समझो आप, आपके मन की तरह हो गया, लड़का डिवोटी हो गया लड़की डिवोटी हो गई बहू डिवोटी हो गई सब चांटिंग कर रहे हैं डीडी वर्शिप कर रहे हैं, तब निकलो आप मन से हाँ मन से विरक्त हो जाओ, ज्यादा आसक्त मत हो जाओ, फिर पोते का भी करूंगी अभी तो पोती का भी करूंगी उसकी शादी भी देखूंगी ये सब मत सोचो, अपना हो गया ना बस अपने ना काम पे लगो, ज्यादा इंटरफेयर मत करो, ये क्यों करते हो उधर क्यों जाते हो इधर क्यों जा रहे हो ये सब मत करो, अपना काम हो गया ना भजन करो अपना फर्स्ट क्लास, जितना जल्दी आप विरक्त हो जाएंगे उतना आपके लिए अच्छा है, जितना मन लगाओगे उसके अंदर उतना दुखी होते जाएंगे, ये दुनिया में आपको सुखी होने का कोई प्लानिंग नहीं है, आपको फ्रस्ट्रेट करने का सब प्लानिंग है दुनिया में, त्यामुळे ये मैंने बताया वो खाली ऐसा एक आदर्श बताया मैंने कि हाँ सब कुछ ठीक है वगैरह खुशी की बात है, वो सब भूलभुलैया है, वो कभी होता नहीं है, कितना भी अच्छा डिवोटी लड़का आपका होगा कितनी भी अच्छी डिवोटी लड़की आपकी होगी आपको आपके झोले में एंड में फ्रस्ट्रेशन ही आना है, ये ध्यान रखना दुनिया आपको तारीफ करेगी क्या आपका लड़का है क्या आपकी लड़की क्या आपकी बहू है क्या आपकी फैमिली है कितने आपका परिवार कृष्णा कॉन्शियस है, लेकिन एंड में गुप्त रूप में आपके झोली में फ्रस्ट्रेशन ही आना है, ये आप समझ के चलो, जो फ्रस्ट्रेशन ऐसा है कि आप किसी का शेयर भी नहीं कर सकते हो क्योंकि वो सोचते कितनी भाग्यवान हो आप, तो आप उनको कैसे बोल सकते हो अरे ऐसा नहीं है बाबा मुझे पता नहीं है मेरे लड़के ने मुझे क्या बोला कल, कैसे बोलेंगे आप उसको, नहीं बोल सकते हैं, इसलिए अपना मार खुद को ही खाना है, तोन दापुन बुक्या सा मार मुंह बंद करके लात मार रहे हैं अपने को बुक्का दे रहे हैं, चुप बैठने का और अपना काम करने का, बस भगवान का भजन करो और खुश रहो, ये दुनिया में से कुछ निकलने वाला नहीं है, कितना भी फटका मारो आप कुछ नहीं होने, इसलिए इतना फ्रस्ट्रेट होके बाद में भगवान की तरह विरक्ति होकर जाने के बदले में पहले से समझो ये शास्त्र किसके लिए बताया जा रहा है, ये प्रवचन किसके लिए हो रहे हैं, ये कथा किसके लिए हो रही है, ये आपको उसी मार्ग में लाने के लिए हो रही है ताकि भगवान से प्रेम बढ़े और दुनिया से कम हो जाए, वो लात खाने की जरूरत नहीं है उसके लिए, है ना, लात खा के ही समझेगा अरे ये बाप रे कितना बेकार दुनिया है, जरूरत नहीं है, बता रहे आपको शास्त्र बता रहा है कि लात पड़ेगी आपको उसके पहले ही बनो, है ना, वो कैसे यहाँ पे परीक्षित महाराज, अरे सांप काट के मर जाएगा वो, लेकिन वो सांप काटने के पहले ही हरिबोल हो गया था उसका, सांप काटने का फॉर्मेलिटी बच गया था कि सांप को भी आना ही है, सांप के हिसाब से उसको आके दंश करना है उसको, लेकिन वो तो इतने होशियार थे कि वो सांप के काटने के पहले उसकी आत्मा जा चुकी भगवान के पास, अभी काटो शरीर मेरा ऐसा होना चाहिए, वो काटेगा तब मैं तड़पूंगा फिर मरूंगा फिर जाऊंगा निकल के शरीर छोड़ के, तब तक शरीर छोड़ने का इच्छा नहीं है, सांप मुझे मत काट, अरे मत काट मुझे, ये सब बोलने से मतलब क्या है, सांप काटने ही वाला है, मृत्यु होने ही वाली है, ये समझ के सांप काटने के पहले निकल गया वो, सांप को भी मजा नहीं आया उसके बाद में काटने का, क्योंकि अभी अंदर आदमी है ही नहीं, मैं खाली काट रहा हूँ, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, इज आइडियल सिचुएशन।